ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। नेपाली पुरुष के साथ विवाह करने वाले विदेशी महिलाओं को 7 साल के बाद ही अंगीकृत नागरिकता देने की व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से बहुमत से हुआ पारित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नेपाल में भी मनाया गया। विभिन्न कार्यक्रमों के साथ योगाभ्यास शारीरिक तंदुरूस्ती के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। आज अतिरिक्त 194 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने के बाद नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या पहुंची 1772 और विश्वभर में कोरोना से मरने वाले की संख्या पहुंची 4,67,000 से ज्यादा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के राष्ट्रीय आकांक्षा पूरा करने के प्रति हम प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मूल समारोह समिति द्वारा आज आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के संदर्भ में हमने हल्दी, अदरक और मेथी लगायत के सेवन पर ध्यान देने की बात कही थी, लेकिन कुछ बुद्धिजीवियों ने इसका मजाक उड़ाया। इस तरह से पूर्वजों की खोज के प्रति मजाक उड़ाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि योग अभ्यास शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए महत्वपूर्ण है। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री ओली ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय योग अभ्यास क्रम पुस्तक का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने स्कूल स्तर से ही योग अभ्यास और अध्ययन की शुरूआत होने की बात बताते हुए कहा कि योग शिक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधि सभा की राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति ने नागरिकता विधेयक को बहुमत से पास किया है। समिति की आज की बैठक ने लंबे समय से सहमति बन नहीं सके नागरिकता विधेयक बहुमत से पारित होने की जानकारी समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ ने दी। समिति द्वारा पारित किए गए नागरिकता विधेयक में नेपाली पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को 7 साल के बाद अंगीकृत नागरिकता देने का प्रावधान रखा गया। आज अतिरिक्त 421 लोगों में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद नेपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 9,026 पहुंची है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने इस बात की जानकारी दी। इसी तरह आज अतिरिक्त 194 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने के बाद संक्रमण से मुक्त होकर घर जाने वाले लोगों की संख्या 1,772 पहुंची है। इसी तरह इसी आषाढ़ 5 गते गुलमी की छत्रकोट गांवपालिका वार्ड नंबर 5 मैन डाड़ा के 69 वर्षीय पुरुष की मौत कोरोना के संक्रमण से होने की बात पुष्टि होने के बाद वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या 23 पहुंची है। गुलमी में एक प्रसूता महिला में कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद गुलमी दरबार गांवपालिका के 3 गांवों को सील किया गया है। गांवपालिका 7 के 21 वर्षीय प्रसूता में कल कोरोना वायरस का संक्रमण पुष्टि होने के बाद अन्य लोगों का स्वाब परीक्षण का रिपोर्ट न आने तक उस वार्ड के 3 गांवों को सील कर दिया गया है। इस बात की जानकारी गांवपालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पांडे ने दी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने आज जिला हुला कार्यालय दैले के प्रमुख अमर बहादुर मल्ल सहित 8 लोगों के खिलाफ जनहित करीब 2 करोड़ बराबर का भ्रष्टाचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। आज ही अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने नेपाल राष्ट्रीय आधारभूत विद्यालय फरसा के तत्कालीन प्रधानाध्यापक संतोष प्रसाद गुप्ता के खिलाफ 6 लाख का भ्रष्टाचार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
14-15
बजारमा नयाँ कि छैन, नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिराख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नुपर्ने रहेछ नि त।
14-15
मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। कोरोना का कहर खत्म होने से पहले ही बांके के राप्ती नदी में पानी का सतह बढ़ने से तटीय क्षेत्रों में डूबने का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे निरंतर बारिश के कारण नदी में पानी का सतह बढ़ने के बाद राप्ती सोनारी डुडुआ और नरैनापुर गांव पालिका की नदी लगपास की बस्ती डूबने के खतरे में है। ये जानकारी जिला आपातकालीन कार्य संचालन केन्द्र के सूचना अधिकृत गौरी बुढ़ाथोकी ने दी। दारचूला की नौगाड़ गांव पालिका में नदी में बहने से एक महिला की मौत हो गई। आज सुबह नदी पार करने के दौरान वार्ड नंबर 3 की 26 वर्षीय कमला ठगुन्ना की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय ने दी। दोलखा की बीगू गांव पालिका वार्ड नंबर 1 लामाबगर में नदी में बहने से 45 वर्षीय सोमती श्रेष्ठ की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय दोलखा के प्रहरी निरीक्षक रेशम बोहरा ने दी। सरलाही में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक व्यक्ति की पेड़ के डाल टूटकर लगने से मौत हो गई, जबकि अन्य एक व्यक्ति घायल हो गए। ब्रह्मपुरी गांव पालिका 6 नौकलवा स्थित सड़क खंड में पीपल के डाल टूटकर सर पर चोट लगने से 45 वर्षीय कैलशिया देवी की मौके पर ही मौत हो गया। ये जानकारी प्रहरी ने दी। एक बच्ची को लालच दिखाकर भारत में बेचने के आरोप में ललितपुर से 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मानव तस्करी अनुसंधान ब्यूरो ने ललितपुर महानगर पालिका 5 लगनखेल से 13 वर्षीय बच्ची को उधार कर बेचने वाले सिंधुपाल चौक 12वीं से घोड़ाथली के हाल सुनसरी रहने वाले कृष्ण मगर और सिंधुपाल चौक के हाल पोखरा लेक साइड रहने वाले प्रवीण तामांग को गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी ब्यूरो द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लेख है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। महामारी इस समय वैश्विक स्तर पर 89,73,000 के पार लोग संक्रमित है और वहीं मरने वालों की संख्या 4,67,000 के पार पहुंच गई है। पर दुनिया में अमेरिका ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा इस वायरस से संक्रमित है। यहां पर संक्रमितों की संख्या 23,00,000 के पार पहुंच गई है, वहीं मरने वालों की संख्या 1,22,000 के पास पहुंच गई है। इसके बाद ब्राजील सबसे ज्यादा संक्रमित है। यहां संक्रमितों की संख्या 10,70,000 से अधिक पहुंच गया है, जबकि मरने वालों की संख्या 50,000 पहुंच गया है। इसके बाद रूस में संक्रमितों की संख्या 5,84,000 के पार हो चुका है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 8,000 को पार कर चुका है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.8 और न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। नेपाली पुरुष के साथ विवाह करने वाले विदेशी महिलाओं को 7 साल के बाद अंगीकृत नागरिकता देने की व्यवस्था सहित नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति से बहुमत से हुआ पारित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नेपाल में भी मनाया गया विभिन्न कार्यक्रमों के साथ। योगाभ्यास शारीरिक तंदुरूस्ती के लिए महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। आज अतिरिक्त 194 लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त होने के बाद नेपाल में कोरोना से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या पहुंची 1,772 और विश्वभर में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 4,67,000 से ज्यादा। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।
जति तारा उदाए नि चंद्रमा।